फिर उसके बाद देखिए कि जब तवाफ करते हैं तो उसके बाद जमजम। आपको बताया कि तवाफ के बाद दो नफिल काम इब्राहिम के पीछे पढ़ते हैं और उसके बाद जमजम। जमजम क्या है? जमजम अल्लाह ताला का मौजदा है। ये वो चीज़ है, मैं सोचती हूँ कि अगर हम जमजम निकलने की हिस्ट्री को सामने रख लेना तो हम जमजम को पीने का मकसद पा लें। दुआ आती है आप लोगों को जमजम को पीने की? नहीं आती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व अमलम मुतकब्बलम व रिज़्क़न वासियन व शिफा मिन कुल्ली दाइन। लफ्ज़ों के फ़र्क से दोनों तीनों दुआएं आगे पीछे भी हैं। तर्जमा क्या है कि अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करती हूँ। नोट तो करें, जमजम पी रहे हैं और दुआ क्या है? नफ़ा बख्श इल्म। कैन यू बिलीव? आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं? अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे? इल्म भी सीखो और नफ़े वाला इल्म सीखो। फिर रिस्कन तैयब, पाक रिस्क दे। आज जितनी लोग हज और उमरे को जाने की कोशिश करते हैं कि उतनी पाकीज़ा रिस्क को पाने की कोशिश करते हैं। शिफा मिन कुल्ली दाइन, हर बीमारी से शिफा मांगती हूँ। अल्लाह तो मेरी दुआओं को कबूल कर। तो जमजम को पीते वक्त जो कैफियत होती है और हर लम्हे हजरत इस्माइल के ऊपर नजरें रहती हैं। मैंने तो जब भी जमजम पिया होगा मेरे दिल से नस्लों के लिए दुआएं निकली कि अल्लाह वो नन्हे इस्माइल की एड़ी को जरिया बना के तूने जमजम जो दिया, तो अल्लाह तो आज इंसानियत, आज भी तो हमारे वही बच्चे हैं, आज भी तो कितने बच्चों का नाम इस्माइल होगा, कितने बापों का नाम इब्राहिम होगा। लेकिन अल्लाह ने मक्का में इस तरह मोहब्बत की दास्तानें खड़ी कर दी। आप मुकाम इब्राहिम पे जाएं तो आपको इब्राहिम नजर आते हैं। एक मौका ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिल गया। आपको पता है कि वो आज उन्होंने सोने के केज में डाला हुआ है। पहले कहते हैं खुला होता था, लेकिन अब उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है। तो मैं वहां खड़ी देखती रह गई। आपको पता है कि इतने लंबे लंबे पांव इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और मटने पत्थर पथरीली जगह है और उसमें गड़े हुए हैं। मुझे लगा कि एक बंदे की इस्तकामत उसके कदमों को अल्लाह ताला इंसानियत की हिदायत का जरिया बना देता है। बिल्कुल आपको अपने दिल की गहराई से बता सकती हूँ, जितने दिन मक्का में रही मुझे लगे कि इब्राहिम मेरे दादा या मेरे बुजुर्ग हैं, और मैं उनको मिस करती थी, वल्लाही मिस करती थी कि कहीं मुझे वो खुद भी तो नजर आ जाए। और मैंने काबा को जितनी दफा देखा मैंने इब्राहिम की नजरों से देखा कि अल्लाह क्या इब्राहिम ने कभी सोचा था कि इधर इतनी रौनकें लग जाएंगी। आपको पता है कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इस वक्त मक्का का, ये बाज लोग तो कहते हैं कि 2 साल में पूरा होगा 2016 में, और बाज कहते हैं कि इसकी एक, बल्कि हमें जो मुख्तलिफ लोगों ने जो भी चीज़ें दी कहते हैं कि टोटल मंसूबा तो ये कोई 10-12 साल का 2020 में पूरा होगा, और फिर यहाँ 1 करोड़ लोग एक वक्त में नमाज पढ़ेंगे। क्या था वो बंजर? यकीन करें मैंने आप लोगों को इतना याद किया वहाँ, सबको, हर तरफ के साथियों को। तो मैं यही कहती थी कि अल्लाह बस तू हमसे इखलास लेके वो कोशिशें करवा ले, हमें नतायज नहीं देखने, हमारी नस्लें देखें वो भी ना देखें, कुछ नतीजा ना निकले, लेकिन इब्राहिम का इखलास थे। इतना मांगा, इतना, मैं तो गई साल इस नियत से थी कि अल्लाह ताला जो खोट खपट दिल की है वो निकाल के ऐसा किरदार बना दे कि जिसके बाद तेरी मदद आती है। अल्लाह ने उस बंजर घर को बना दिया। और कभी आप जहाज से नीचे, जब आप जहाज उतरता है कभी आप नीचे तो देखा करें, क्या सुबहान अल्लाह, ऐसे लगता है कि रेत के अंदर अल्लाह ताला ने अपना घर रख दिया। आप जद्दा से नीचे देखें, जद्दा में जब उतरते हैं निरा सहरा है, कौन मुंह करता था इस रुख का, कैसे अल्लाह ने अपना घर वहां बनाकर पूरी दुनिया के लोगों की नजरें इधर लगा दी। तो आप कोई नेकी छुप के करें, आज आपको आपके किसी नेकी का कोई रिवॉर्ड नहीं दिखता। एक लफ्ज कोई आपको थैंक यू, अप्रिसिएशन, वेल डन, गुड डन, एक्सीलेंट, शाबाश, बिस्मिल्लाह नहीं कहता, शुक्र करें अल्लाह का। इब्राहिम ने जब ये घर बनाया था कोई उस वक्त उनको अप्रिसिएट करने वाला था ही नहीं, किस तरह अल्लाह ने उनकी नेकी को कायम रखा। फिर इस्माइल, फिर माँ, एक खानदान का सबर है। आप देखिए कि आप अगर आज दीन के सफर पे हैं, आज आप सीख रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉर्वे से भी सुन रहे हैं हमारे साथ, वो काम कर रहे हैं, पिछले कई साल से उनकी जिंदगी अब स्कूल के साथ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो आपको अपने बच्चों को लाना है, आपको अपने शोहरों को लाना है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम पूरे खानदान को लेकर आए थे। कभी आपने सोचा? मैं अभी आपको थोड़ा सा एक नुक्ता देती हूँ, बाद में खुद सोचिएगा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम से कहा कि अपनी बीवी को ले आओ, सुना हुआ ना वाक्य, बेटे को भी ले आओ। अच्छा जी ले आए, फिर वहां छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अक्ल से पूछिए क्या तू क्या थी? अल्लाह ने ये घर आबाद करना था ना, अल्लाह कहते मियाँ बीवी बच्चा इधर आ लो, मिसाल है। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? ये असबाब क्यों थे कि बीवी को लाओ बच्चे को लाओ तुम जाओ वापस? भाई बीवी बच्चे को रखा है तो तुम भी रह लो। ये अल्लाह ने बात करना था वैसे ही दिलों में डाल देता लोगों के कि वहां आके बैठते। अल्लाह कुर्बानियां और हिजरतें मांगता है। अगर आज मैं कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं हूं, अल्लाह के दीन को सिसकता बिलकता देखूं और मैं कुर्बानी करे बगैर अपनी अना के पुत में बैठी रहूंगी तो कभी भी चेंजेस नहीं आएंगी दुनिया में कुछ नहीं। आप ये तो कहते हैं बहुत खराबी है उधर, ये वो, ये बताएं कि आप उसको कैसे चेंज कर रहे हैं? आप क्या इसलाह की कोशिश करते हैं? तो इब्राहिम और अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल और बीबी हाजरा ने, तो मैं कहती हूँ कि वो 5 दिन बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे मैं उनके खानदान का हिस्सा हूँ। और मुझे बार बार रोना है, जैसे मुझे फीलिंग क्या आती थी कि जैसे आप पाकिस्तान जाएं कि आप अपने किसी प्यारे को मिलेंगे ना, लेकिन आप वहां जाएं भी तो आपको ना मिले। कभी ऐसा होता है ना, आप जा तो चुके हैं लेकिन मिले नहीं अपने किसी प्यारे को, माँ बाप को भी नहीं मिले, भाई बहनों को नहीं मिले, अभी कहते मिलूंगी। क्या फीलिंग्स होती हैं ऐसी, मेरे दिल के अंदर हूक उठती थी कि अल्लाह वो किधर है, कभी एक नजर वो आके देखें कि ये 1 करोड़ लोगों के बैठने की जगह इधर क्यों बन रही है क्या उस जगह, बिकता क्या, बटता क्या? आगे तो रस्तों में छोटी छोटी दुकानें थी बहुत, जब हम लास्ट टाइम गए तो आपने भी देखा होगा कि रस्तों में जब आप नमाजों के लिए जाते हैं ना, इधर उधर थड़ों पे बैठे हुए लोग, कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया दिख ही नहीं। हम तो यही सोचते रह गए कि अब तो यहाँ शॉपिंग की कोई चीज ही नहीं, सिवाय वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके जो सबसे नीचे फ्लोर है उसमें भी ज्यादा गोल्ड की और बड़ी कीमती दुकानें थी, कोई दुकानें नहीं दिखी, या तो वो खत्म हो गई है या अंदर किसी जगह कर दी कुछ कर दी, लेकिन एक दीवानगी है नमाजों के वक्त पे। फिर आप देखिए कि लोग बास लोग बेचारे जो दूर दूर रहते हैं उनको क्या, आप देखिए एक नमाज के बाद आप बाहर निकलते हैं अल्लाह आपको करीब देता है। हमारा बिल्कुल सामने ही थी जगह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप चाहें तो 5 नमाजों में जाके वापस आ जाए, लेकिन रास्तों में हम देखते थे वहीं फैमिलियां बैठी जमीन पे अखबारें बिछा के खाना रखा हुआ खा रहे हैं। मैं कहती थी यहाँ आके क्या हो जाता है, मैं डाइनिंग टेबल चेयर वो, यानी मैं इतना खुश होती हूँ आजकल किसी वजह से, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी एक्सरसाइज करा दी। 2 डिस्पोजेबल प्लेटें, 1 ग्लास और 2 1-2 चम्मच हो तो आपकी जिंदगी काफी है, ये बाकी सिर्फ और सिर्फ हमारी आना है। आप अगर हज और उमरे से आए और उसके बाद आपकी जिंदगी आसान ना हो तो आप समझे कि आपका फायदा ही नहीं हुआ, वहां तो मस्त मलंग बन जाते हैं, किसी को केयर ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन घर आती हमारी फिर आना खुल जाती है, फिर हम कहते हैं अब किधर है वो है। मेरे से तो ऐसे लग रहा है कि वही 2 जोड़े मेरे लिए बहुत है, मौसम के लिए कपड़े पहनने हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनने। और आप फील करते हैं कि इसके बाद आपके अंदर आती है एक आजी। एक और चीज जिसका अगर मैं जिक्र ना करूं मक्का के नाते से तो मेरा अलग ज्यादती होगी, उसकी भी इधर पिक्चर्स हैं, जनाजे। पूरे सफर में मक्का और मदीना में मुझे सिर्फ एक नमाज याद है जिसमें मेरे कान मुंतजर थे कि फर्ज पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं तो इमाम साहब एक आवाज लगाते हैं, वो पहले बता देते हैं कि आज अब किसका है। आप अगर आप जाएंगे ना तो सुनिएगा, मईता कहेंगे तो एक मैयत है, अमवात कहते हैं तो बहुत सारी हैं, तिफल के तो बच्चे भी हैं। अल्लाह के हुक्म से जहां हम ठहरे थे ना वो बाबे सफा ही से गुजरते, यानी हम जाते थे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट डोर बाबे सफा के पास बाबे बिलाल है, उधर से ही जाते थे। उधर मुस्तशफा जिसको आप कह लें हॉस्पिटल, बाद में हमें समझ आनी शुरू हो गई थी, बिल्कुल हम जाते ही गिन लेते थे कि आज कितने जनाजे हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी। हमें ये भी वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि मक्का पूरे में कहीं भी कोई बंदा मरता है किसी हॉस्पिटल में किसी घर में तो उसको खाना कबा मिलाते हैं, ये वहां का रूल है। पहले हम सोचते थे, मैं सोचती थी ये कि शायद जो हाजियों में से जो लोग आए हुए मरते हैं उनका है, तो फिर उनकी लाश, और वो वहां से ना अगर आप कभी जाएं तो नमाज से आधा को घंटा पहले अजान से पहले ले जाते हैं अंदर, तो आप देखिएगा सब कपड़ों में लिपटी हुई पूरी मैयतें अंदर जा रही होती हैं। सिर्फ एक नमाज ऐसी याद है कि जिसमें कोई मैयत की आवाज नहीं लगी, बाकी हर नमाज के साथ नमाज जनाजा पड़ी है। तो मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला यहाँ आके वैसे भी एक नमाज का अजर बढ़ गया, फिर मदीना में गए तो वहां भी एक नमाज हजार के बराबर, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा नमाज है, आप कहते हैं ना कि नमाज जनाजा पढ़ने का कितना अजर है, एक किरात का अजर है, तो उसके बाद यह है कि हर नमाज के साथ हमने पढ़ी, और आप भी पढ़ें, बहुत आसान है, औरतें भी पढ़ती हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप भी सबके साथ खड़े हो जाएं, पहली दफा अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब जब अल्लाह अकबर के तो उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे आप, फिर दूसरी अल्लाह अकबर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी अल्लाह अकबर के बाद मैयत की दुआएं, जो भी पढ़े अल्लाह मगफिर लहू या अल्लाह मगफिर ली हयातिना मैयतिना, जो भी पढ़ सके। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो बहुत टाइम देते हैं। आमतौर पे हमने कभी अपने मुल्कों में या अमेरिका में इधर उधर कहीं पढ़े तो फौरन फटाफट 2-3 मिनट में सलाम फेरते हैं, लेकिन वो कम अज़ कम 3-4-5 मिनट देते हैं। फिर उसके चौथी अल्लाह अकबर के बाद फिर एक सलाम फेरते हैं। तो बाज़ लोग फिर रहे होते हैं उस वक्त चले जाते हैं, तो मैं सोचती थी ये अपना कितना अजर ज़ाया करते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, औरतों को भी मर्दों को भी एक ही जितना अजर है। फिर उसके बाद नमाज, जब जनाजा हो जाता था तो नमाज के फिर उसी डोर से उनको लेके जाते थे। तो मैं उस वक्त सोचती थी वो हदीस के अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसकी मैयत पे 40 मवाहिदों ने दुआ कर दी, यानी मवाहिद समझते हैं तौहीद परस्त अल्लाह को एक मानने वाले लोग, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश उनके हाथ में कबूल कर लेगा। यानी ये भी एक किस्म की दरख्वास्त होती है ना कि आप अल्लाह ताला जिंदा के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह मगफिर ला उसको माफ़ कर दे, तो नमाज जनाजा ये है कि मरने वाले के लिए करते हैं। तो इतने लोग इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, वो भी क्या नेकी होगी। दिल चाहे कि अल्लाह ताला बस जब भी तूने हमारा वक्त लाना है हमें मदीना में मारना, क्योंकि हदीस है कि नबी सल्लम की के मेरे शहर में जो मरेंगे उनके लिए इसकी खुशखबरी है। फिर आपको पता है कि मक्का में मौल्ला है, यानी एक जन्नत माला लोग कहते हैं, हालांकि वह जन्नत नहीं है, यानी कब्रिस्तान है मोस्टली, फिर लोगों को वहाँ दफन किया जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि और बहुत कुछ है, मैंने दो इससे पहले शेयरिंग की है इसके बारे में, एक हमने लाहौर में की थी और उसमें पूरा मैंने इसको इस थीम के साथ जोड़ा था कि बैतुल्ला का सफ़र सफ़रे हिदायत, बल्कि एडमिन्स के पास उसका लिंक है, किसी वक्त आपको भी इधर या क्लास में हम सुनाएंगे, काफ़ी मोटिवेशनल है। फिर दूसरा थोड़ा सा जो हमने अपने हालात के मुताबिक थोड़ा सा आपके साथ किया था, आज मेरा ये दिल था कि हम ये बातें सिर्फ अपनी कहानियाँ ही ना करें बल्कि इससे अमल की बातें लेना।